नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। आप सब इस बात से जरूर वाकिफ होंगे कि न तो वक्त किसी के लिए ठहरता है और न ही परिस्थितियां हमेशा अनुकूल होती हैं। उसे अपने हिसाब से ढालने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कदम कदम पर उससे जूझना पड़ता है। कहा तो ये भी जाता है कि निराशावादी हवा के बारे में भी शिकायत करता है, जबकि आशावादी हवा के रुख को बदलने की उम्मीद रखता है। एक लीडर हवा के रुख के हिसाब से नाव के पाल को भी एडजस्ट कर लेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव को लेकर हमारे सियासी दल क्या सोच रहे हैं। निराशावादी, आशावादी और व्यवहारिक नेता चुनावी हवा को किस तरह से महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने 2024 में सिंपल मेजॉरिटी की जगह 370 प्लस का टारगेट क्यों सेट किया है? पीएम मोदी दो तिहाई बहुमत क्यों चाहते हैं? उनके एजेंडे में कौन कौन सा काम बाकी है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है? 2024 की लड़ाई जीतना कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है? कांग्रेस को कहां कहां से उम्मीद और चुनौतियां दिख रही हैं? अगर कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो पार्टी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरजेडी जैसी पार्टियां 2024 के नतीजों को लेकर कितने आशावान हैं? 2024 के नतीजों के बाद की तस्वीर कैसी बनेगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपने स्पेशल शो 2024 में करो या मरो में। हाल ही में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मैंने एक नेता जिनकी पार्टी सत्ता से बाहर है से पूछा, इस बार चुनाव में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? उन्होंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया कि अगर आप ये पूछती कि कितनी सीटों पर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है तो ज्यादा ठीक रहता। ये बहुत ईमानदारी से दिया गया जवाब और जमीनी हालात का आकलन था। राजनीतिक पंडित भी यही हिसाब लगा रहे हैं कि कितनी सीटों पर दमदार टक्कर होगी, कहां कहां ऐसी जोरदार टक्कर होगी जिनके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में अक्सर इस तरह बात करते हैं मानो वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हों कि तीसरी पारी में उनका आना तो तय है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। अफसरों से भी वो 2024 के बाद के टारगेट की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तीसरी पारी के लिए कई ऐसे टारगेट सेट कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें पहले से बड़े जनादेश की जरूरत है। मसलन एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू करवाना, बीजेपी का एक देश एक कानून का वायदा अभी अधूरा है, संसद में पास महिला आरक्षण बिल को जमीन पर उतारना, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना और देश में भर्तियों के सिस्टम में सुधार करना। लेकिन ये सब तभी संभव है जब बीजेपी को बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा जनादेश मिले।
शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 पेजेस एज वाज डन लास्ट टाइम।
लोकसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो गया, नतीजे कब आएंगे ये भी साफ हो गया। होली के रंगों की तरह चुनाव के रंग में पहले से ही देश रंगा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के महारथी एक एक वोट का हिसाब लगाते हुए लोगों के मन को पढ़ने, करंट और अंडर करंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक सत्ताधारी बीजेपी देश की आधी से अधिक लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा मोदी है, उनकी सरकार का काम है, उनका नाम है, उनकी गारंटी है।
मोदी आपकी गारंटी लेता है।
2024 के लिए बीजेपी का टारगेट पहले से तय है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार।
दरअसल नरेंद्र मोदी की राजनीति को करीब से देखने वालों का मानना है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से टारगेट तय करते हैं और अपने टारगेट को चरणबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। वो अपने साथ काम करने वाले लोगों की क्षमताओं को भी बखूबी समझते हैं। इसलिए पीएम मोदी एक ओर पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार का कामकाज गिनाते हैं तो दूसरी ओर अगली पारी के लिए तय टारगेट बताना भी नहीं भूलते।
तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा, यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों,
मोदी जानते हैं कि उन्होंने जिस न्यू इंडिया का सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए प्रचंड बहुमत से तीसरी पारी में आना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने देश के 1,40,00,000,000 लोगों से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया। एक देश एक चुनाव की ओर उनकी सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने के लिए कानून तो पास हो चुका है, लेकिन इस कानून का फायदा महिलाओं को मिलना भी बाकी है। बीजेपी के पुराने वादों में से एक बड़ा मुद्दा रहा है एक देश एक कानून, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हालांकि उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी कानून को लागू कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी कई ऐसे टारगेट हैं जिन्हें पूरा करने के लिए संसद में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ सकती है, संविधान में कई बदलाव और संशोधन करने पड़ सकते हैं। ऐसे में बिना बड़े जनादेश के बड़े और कड़े फैसले संभव नहीं है।
370 मिलने का मतलब तो यही है कि बीजेपी का बाकी जो काम अधूरा रहा है देश में, जो चाहते हैं खासतौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चाहते हैं, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक से लागू करना देश में, एक देश एक चुनाव, तो इसका कुछ करना चाहते हैं। इसलिए अगर नहीं हुआ तो इसमें पूरा बहुत असर तो पड़ेगा कि ये लक्ष्य तो बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, एलाइज के ऊपर सरकार चलाने के लिए। सारे एलाइज ये सारे बीजेपी का मुद्दा मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो देखने वाली चीज है।
उनका उद्देश्य है कि इतनी मेजॉरिटी आ जाए कि वो जो चाहे कर सकें। संविधान को भी बदलने की बात जो हमेशा कही जाती है कि उनके अंदर अंदर ये भी है, संविधान ही को बदल डालेंगे, क्योंकि बहुत से संविधान में ऐसी चीज़ें हैं जो आरएसएस को बड़ा ऑब्जेक्शन है, तो वो तभी मुमकिन है जब 370 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं मैसेज देने के लिए अपनी उस हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि हम तभी कर पाएंगे वो सपना पूरा आप लोगों का कि हम संविधान को बदल दें जब हमारे पास इतनी सीटें होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक का लक्ष्य सेट कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत न्यू इंडिया के ग्रोथ इंजन में ईंधन के तौर पर छात्रों को तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नई शिक्षा नीति को पूरे देश में सही मायनों में जमीन पर उतारने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 1,40,00,000,000 लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होता। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में बीजेपी महारथियों को इस बात का इल्म है कि अगर सत्ता से चूके या पिछले आम चुनाव से प्रदर्शन खराब हुआ तो आगे की राह कितनी मुश्किल होगी।
ये विकास का उत्सव मनाइए।
एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू करने के लिए कई कानूनों में फेरबदल करना पड़ सकता है। इसी तरह एक देश एक कानून के लिए भी संविधान में संशोधन करने पड़ सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के विरोधी सुर का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति 2024 में इतना बड़ा जनादेश हासिल करने की है जिससे कहीं भी विपक्ष स्पीड ब्रेकर की भूमिका न निभा सके। पिछले 10 साल में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से आउट है। अगर भारत के राजनीतिक नक्शे को देखें तो कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में ही शासन कर रही है, जहां देश की करीब 8.5% आबादी रहती है। दिसंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथों से निकल गया। सियासी हवा का रुख देखते हुए कांग्रेस के दिग्गज पाला बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो क्या होगा, क्योंकि बिना सत्ता के कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बनाने लगते हैं और पार्टी चलाने के लिए जरूरी फंड जुटाना भी मुश्किल होता है। अब सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की राहें आसान होंगी या और मुश्किल।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली, इसका टेस्ट भी इस बार के लोकसभा चुनाव में होना है। कांग्रेस अच्छी तरह समझ रही है कि सत्ता की असली चाबी देश की महिला वोटर्स के हाथ में है। ऐसे में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया, साथ ही देश भर की गरीब महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपए देने का वादा किया।
कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है। देश के सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। संभवतः पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 1984 में कांग्रेस को 48% वोट मिला था, जो 1989 में गिरकर 40% से नीचे आ गया। 1996 में कांग्रेस का वोट शेयर 30% से भी गिर गया। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस का वोट 20% से भी नीचे आ गया।
कांग्रेस के लिए जो 2014 की लड़ाई थी या 2019 की लड़ाई थी, वो दोनों ही करो और मरो की लड़ाई थी। अब कांग्रेस के पास गंवाने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए ही है जितना वो गंवा चुकी है। चाहे वो 54 सीटों की पार्टी हो या 44 की आ जाए, 45 की आ जाए, तो बहुत कुछ गंवाने के लिए कांग्रेस के पास नहीं है। कुछ है जो पाने के लिए है, अगर है तो। और करो या मरो की लड़ाई किसी भी नेशनल पार्टी के लिए हुआ करती है, क्योंकि अगर आपने सत्ता से बहुत ज़्यादा दूर रहे तो हालत वही हो जाएगी जो एक समय जनसंघ की या भारतीय जनता पार्टी की या जनता पार्टी की हुआ करती थी।
आज की तारीख में कई राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस के लिए ये चुनाव जियो या मरो वाली हालत है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है और पिछले 3 चुनाव ऐसे थे, प्रदेश ऐसे थे जहां कांग्रेस हारी, जहां पे बहुत उम्मीद थी, सबको ये उम्मीद थी, कांग्रेस वालों को भी और बीजेपी वालों तक को थी कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में से कम 2 स्टेट्स निश्चित रूप से जीतेंगे।
सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में भी बीजेपी की रफ्तार कांग्रेस से बहुत तेज है। कभी कांग्रेस के दिग्गज और चर्चित चेहरा रहे, कई नेता आज की तारीख में कमल खिलाने में पूरी शिद्दत से जुटे। हवा के रुख के हिसाब से कार्यकर्ता भी पाला बदल रहे हैं। ऐसे में 2024 की लड़ाई में कांग्रेस एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही है।
मोदी जी ने ऐसा वो एक वातावरण पैदा कर दिया है कि सब लोग लगता है टेरिफाइड है। खड़गे का बयान देखिए, वो भी टेरिफाइड लग रहे हैं। कई उनके जो बड़े बड़े नेता हैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, और ऐन चुनाव के मौके पर कई जो बड़े नेता हैं बीजेपी में शामिल हो गए। इतनी निराशा और हताशा का वातावरण डेलिबरेटली लोग क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसका पर्टिकुलरली कांग्रेस का जिसका 150 साल का इतिहास है, निराशा के वातावरण में चुनाव में जाना चाहिए। तो ये उसी को घाटा कर रहा है वो।
अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सामने कई चुनौतियां होंगी। मसलन पार्टी के बचे खुचे नेताओं को एकजुट रखने की समस्या, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की समस्या, जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने की चुनौती, पार्टी को चलाने के लिए फंड जुटाने की समस्या, उन राज्यों में सरकार बचाए रखने की चुनौती जहां अभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। कुछ पॉलिटिकल पंडितों की सोच है कि कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 की तुलना में सुधरता है तो 2024 से कांग्रेस की राहें थोड़ी आसान हो सकती हैं। लेकिन अगर ये मौका भी हाथ से निकला तो सत्ता के रेस में कांग्रेस बहुत पिछड़ती दिखेगी, जहां से दोबारा केंद्र की सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा।
राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। किसी भी लीडर की सबसे बड़ी यूएसपी होती है हर परिस्थिति में आशावादी होना। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 40 साल पहले साल 1984 का चुनाव, बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने संघर्ष किया, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए नए नए प्रयोग किए, गठबंधन सरकार बनाने के लिए अपने बड़े मुद्दों को किनारे भी रखा। 2014 से बीजेपी केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, देश के 12 राज्यों में उनकी सरकार है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बीजेपी इस मुकाम तक पहुंच सकती है तो फिर दूसरी पार्टियां क्यों नहीं। 2024 का चुनाव एक और पार्टी के लिए बहुत अहम है, वो है आम आदमी पार्टी। अगर पिछले एक दशक में सबसे सफल पॉलिटिकल स्टार्टअप का कोई अवार्ड होता तो यकीनन वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाता। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को आगे कर आप पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब रही। कई राज्यों में विस्तार के प्लान पर टीम केजरीवाल लगातार काम कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार चुनाव में आपकी सीटें बढ़ जाएंगी। अगर आपका प्रदर्शन नहीं सुधरा तो क्या होगा, और अगर सुधरा तो क्या होगा।
आम आदमी पार्टी अपने विस्तार प्लान पर लगातार काम कर रही है। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी अखाड़े में है, वहीं दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में। ये भी अजीब है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में किस्मत आजमा चुकी आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने का फैसला लिया और इंडी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने का फैसला किया। दरअसल आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि प्रचंड चुनौतियों के बीच भी स्कोर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुनामी केजरीवाल के पक्ष में चली, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने कमल खिलाया। अब पंजाब में भी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां लोकसभा की 13 सीटें। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में आपके टिकट से 4 उम्मीदवार संसद पहुंचे तो साल 2019 में सिर्फ संगरूर से भगवंत मान ही लोकसभा पहुंच पाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पंजाब से बड़ी उम्मीद है। इसी तरह दिल्ली में आप बीजेपी कांग्रेस की त्रिकोणीय लड़ाई में फायदा बीजेपी को मिल रहा था, अब दिल्ली के अखाड़े में आप और कांग्रेस साथ साथ हैं।
इस बार वो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके उनको जो हासिल होगा वो भले ही कुछ सीटें हासिल हो, लेकिन वो हासिल होना उनको एक गति प्रदान करेगा। वैसे भी एक नेशनल पार्टी के रूप में आपको मान्यता मिल चुकी है, और जिस तरह का जो एक क्लियर इंस्टिंक्ट नरेंद्र मोदी में है, यदि आप देश के और बाकी पार्टी के नेताओं को देखें तो वो क्लियर इंस्टिंक्ट अरविंद केजरीवाल में देखने को मिलता है, किसी और नेता में देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के बाद की जो स्थिति है आपके लिए वो बेहतरी होगी।
अगर 2024 में पंजाब और दिल्ली में झाड़ू चल गई, दूसरे राज्यों में भी आपका वोट शेयर बढ़ा, तो इससे आम आदमी पार्टी के विस्तार प्लान को मजबूती मिलेगी। साथ ही केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का प्रचार प्रसार देश के दूसरे हिस्सों में भी और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अगले चुनावों में आम आदमी पार्टी लोगों के बीच इस एजेंडे के साथ जोर शोर से पहुंचेगी कि मोदी को सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर दाव उल्टा पड़ा तो आपके विस्तार प्लान को झटका लगते देर नहीं लगेगी, क्योंकि पार्टी के कुछ सीनियर नेता अभी जेल में हैं और कुछ जांच की आंच के दायरे में।
राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब लगाते हुए गठबंधन की स्क्रिप्ट भी तैयार हुई है। सहूलियत का गठबंधन चुनाव तक चलेगा या बीच में ही दम तोड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी की रणनीति में देश की राजनीति में दूसरे नंबर की पार्टी बनने के साथ ही लोकसभा में सीटें बढ़ाने से लेकर वोट शेयर तक बढ़ाना शामिल है। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी, बिहार में लालू यादव की आरजेडी जैसी पार्टियों के सामने भी संकट कम नहीं है। एसपी बीएसपी तो लंबे समय से सत्ता से दूर है। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव में साइकिल या हाथी का प्रदर्शन गिरा तो पार्टी को बचाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। देश की कई और क्षेत्रीय पार्टियां भी करो या मरो वाली स्थिति से जूझ रही हैं।
अखिलेश यादव 2017 से यूपी की सत्ता से आउट है। सत्ता में वापसी के लिए गठबंधन में कई प्रयोग कर चुके, कभी दो लड़कों की जोड़ी, कभी बुआ बबुआ का साथ, कभी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन, तो कभी ओम प्रकाश राजभर को गले लगाया। मिलने बिछड़ने का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन साइकिल सत्ता से दूर रही। इस बार फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, वो बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं।
देश की लड़ाई यूपी में होने जा रही, हालांकि पूरे देश में चुनाव होगा। देश में बहुत सारे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने जा रही है वो आमने सामने की लड़ाई है, और जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही देश का भविष्य बनेगा। अच्छा। और जो लोग 14 में आए थे, जो लोग 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे।
अखिलेश यादव को भी अंदाजा होगा कि 2024 में वोट शेयर या सीटें घटने का समाजवादी पार्टी पर कितना असर होगा। कुछ हफ्ते पहले तक अखिलेश यादव के साथ खड़े रहने का वादा करने वाले जयंत चौधरी भी अब बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कड़ा है। मायावती 2012 से ही यूपी की सत्ता से बाहर है। वो चुनावी अखाड़े में अकेले ही उतरने का ऐलान कर चुकी। ऐसे में अगर पिछले चुनावों के तुलना में बीएसपी का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो फिर मायावती के लिए सियासी अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा।
बसपा का जहां तक सवाल है, बसपा तो है ही नहीं मैदान में। बसपा खाली नाम के लिए है। इलेक्शन टाइम में बहुत से कारण होते हैं और बसपा जैसी पार्टी खासतौर से जहां हर टिकट का दाम होता है तो इलेक्शन टाइम में थोड़े एक्टिव दिखते हैं, वरना आप पिछले 2 साल 2.5 साल में देख लीजिए मायावती ने जिस तरीके से अपने आप को इस तरह से विड्रॉ कर लिया है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, उससे दिखता है कि या तो वो ईडी और सीबीआई का डर है जिसकी वजह से वो प्रेशर में है, ये माना जाता है, और इसलिए वो सही तरीके से उस तरीके से फ्रेम में नहीं है जो चुनाव के लड़ने के मूड दिखता है, वैसा नहीं है। तो 2024 के बाद मुझे लगता है उनकी स्थिति और बिगड़ने वाली है।
यूपी से बिहार तक की छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियों ने अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से गठबंधन में पाला चुन रखा है। बिहार में आरजेडी के सामने भी करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों से जो इकोसिस्टम बनेगा उसका साइड इफेक्ट अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखना तय है।
24 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों बाप बेटा काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करेंगे, और अगर गिर भी गया मान लिया अभी तो कुछ उनके पास होने लायक है नहीं। इस लोकसभा में आरजेडी का एक भी मेंबर नहीं है तो उनके पास होने के लिए कुछ नहीं, अगर एक भी मिला तो गेन होगा, दो भी मिला तो गेन होगा। वो
हरियाणा और महाराष्ट्र के अखाड़े में खड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी 2024 की लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन का बहुत अधिक दबाव है, क्योंकि 24 के नतीजे ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे कि क्षेत्रीय पार्टियों का अगले विधानसभा चुनावों में भविष्य किस रास्ते आगे बढ़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य गठबंधन के नाव पर सवार होकर आगे बढ़ेगा या फिर अपना वजूद स्वतंत्र रूप से बचाए रखने में कामयाब रहेंगी।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग को डिकोड करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा लगता है कि 2014 से ही मोदी शाह की रणनीति राष्ट्रीय पार्टियां खासकर कांग्रेस को कमजोर करने की रही है। कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे पर बीजेपी के महारथी लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी को देश की आधी लोकसभा सीटों पर मजबूती से टक्कर देने वाला एक भी राजनीतिक दल नहीं दिख रहा। 2024 में मोदी सुनामी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन ने जो छतरी तारने की कोशिश हुई, वो भी आपसी खींचतान में पूरी तरह से नहीं खुल पाई है। ऐसे में अगर चुनाव में बीजेपी 370 प्लस के टारगेट को हासिल कर लेती है तो भी बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दलों की चुनौती तो रहेगी ही। पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, उड़ीसा में नवीन पटनायक, झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे मजबूत शत्रु, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव भले ही सत्ता से बाहर हो पर बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने के लिए पूरी कोशिश करते रहे हैं। अगर 2024 के चुनाव में सब कुछ मोदी शाह के प्लान के मुताबिक हुआ तो अगला नंबर क्षेत्रीय दलों और शत्रुओं का होगा। जहां बीजेपी सत्ता में आने का इंतजार कर रही है, इस चुनाव में ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन नेता जीतने के लिए लड़ता है, कौन कड़ी चुनौती देने के लिए लड़ रहा है और कौन रस्म अदायगी के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतर रहा है। हमारे लोकतंत्र में ऐसे आशावादी नेताओं की फौज कितनी बड़ी है जो अभी सरेंडर की मुद्रा में है और 2029 में हालात के अनुकूल होने का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।